अर्पा रेडियो प्रस्तुत करता है सिरी धान्य या मिलेट्स पर जागरूकता आधारित कार्यक्रम मिलेट मिशन। अच्छा आहार मनुष्य को स्वस्थ रखता है, यही स्वास्थ्य का रहस्य है। पोषक तत्वों से युक्त तृण धान्यों को लोग भूलते जा रहे हैं, परिणाम स्वरूप मनुष्य को स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हम कितने समय तक जी रहे हैं ये विशेष नहीं होता, विशिष्ट होता है स्वस्थ रूप से जीना। इसके प्रति सभी जागरूक हो रहे हैं। अच्छा आहार, स्वस्थ आहार मिलना कठिन होता जा रहा है। समाज को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में तृणधान्य अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। स्वास्थ्य की ओर जागरूक जनता मिलेट्स की तरफ आकर्षित हो रही है। इस दिशा में अगर लोग आगे बढ़ेंगे तो विष आहार से भी निजात पाएंगे। तृणधान्य, सिरी धान्य, मिलेट्स एक मिशन के रूप में आगे बढ़ रहे हैं और अर्पा रेडियो भी मिलेट को मिशन के रूप में लेकर आप लोगों को इसके बारे में सारी जानकारियां देने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसीलिए एक श्रृंखला के रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं कार्यक्रम मिलेट मिशन। इस श्रृंखला के पहले एपिसोड में हमने इन सिरी धान्यों के बारे में लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जी से बातचीत की थी। आज के अंक में लक्ष्मी नारायण जी अग्रवाल हमारे साथ फिर से हैं, जो आपको जानकारी देने वाले हैं 5 मुख्य मिलेट्स में से एक कोदो के बारे में। और इनसे बातचीत कर रहे हैं अनीश श्रीवास।
कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता जान ही रहे हैं कि पिछले अंक में हम बात कर रहे थे लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जी से, जो कि तुलसी मिलेट चौपाटी के संचालक भी हैं। संचालन के साथ ही साथ वो सिरी धान्य, जिसे मिलेट्स भी हम कहते हैं, उसे लेकर के लोगों में जागरूकता लाने का अपना एक प्रयास कर रहे हैं और इसी प्रयास को वो तुलसी मिलेट चौपाटी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। कार्यक्रम के पिछले अंक में हमने जाना कि मिलेट्स कितने प्रकार के होते हैं और किन किन अनाजों को मिलेट्स के अंतर्गत रखा गया है। आज के बाद और आगे हम एक एक मिलेट्स, जो 5 मुख्य रूप से जिन मिलेट्स को आहार के रूप में लिया जाना है, उनके बारे में हम उनसे जानकारी लेंगे। तो आज आपका फिर से स्वागत है लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जी हमारे इस कार्यक्रम में।
धन्यवाद।
तो अग्रवाल जी, हम ये जानना चाहेंगे जो 5 मुख्य मिलेट्स के बारे में आपने हमें पिछली बार बताया था, आज किस मिलेट्स को लेकर के आप विशेष तौर पर पूरी जानकारी देना चाहेंगे?
आज कोदो के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे।
जी, तो कोदो के बारे में श्रोताओं, आज हम जानेंगे कि कोदो क्या है, कोदो का प्रकार किस प्रकार से होता है और उसकी तासीर क्या है और किस प्रकार के रोगों में वो किस तरह से काम करता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो अग्रवाल जी, पूरी जानकारी विस्तार से हमें बताएं।
कोदो के अंदर में जो है 65.6% तो कार्बोहाइड्रेट्स होता है
जी,
और इसमें फाइबर जो है 9% होता है
जी। जी,
तो इसका जो है जो रेशियो बनता है कार्बोहाइड्रेट से फाइबर का रेशियो बनता है 7.28%
जी,
जो कि ये अच्छा माना जाता है। कोदो स्वाद में मीठा भी होता है, हल्का सा कड़वा भी होता है और हल्का सा तीखा भी होता है।
अच्छा।
यह रक्त को शुद्ध करने, प्रतिरोध शक्ति में सुधार लाने
जी,
एनीमिया, मधुमेह, कब्ज और अच्छी नींद आने के लिए बहुत मददगार है।
अच्छा जी।
इसके अलावा हमारे हड्डियों के संबंध में जो भी प्रॉब्लम है उसमें ये लाभ करता है
जी।
अस्थमा, सांस की बीमारी होती है, इसमें लाभ करता है। गुर्दे की समस्याएं, मतलब किडनी से संबंधित जो है प्रॉब्लम, उसमें लाभ करता है। और प्रोस्टेट में बहुत लाभ करता है। रक्त कैंसर को भी ठीक करता है और आंत, थायराइड, गले और हमारे जो पाचन संस्थान है उसके कैंसर तक को जो है छुटकारा दिलाने में मदद करता है।
अच्छा, अरे वाह।
इसमें उच्च पौष्टिक मूल्य होते हैं, इसलिए बच्चों के लिए बहुत अच्छा भोजन है।
अच्छा जी।
इसमें विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं, यह पाचन के लिए बहुत अच्छा है
जी।
इसमें उच्च एंटीऑक्सीडेंट जो है वो भी इसमें मिलता है
जी।
यह रक्त में शर्करा यानी शुगर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल में रखता है
जी।
यह खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन है
जी। जी
यदि इन्हें आप चना के साथ लें, ग्वार फली वगैरह के साथ लें, तो यह हमारे शरीर के लिए जो है बहुत लाभदायक होता है
जी।
उच्च फाइबर होने के कारण यह वजन कम करने के लिए बहुत अच्छा है
जी।
लंबे समय तक बीमारियों से जो ग्रसित रहते हैं और जिनके सूजन वगैरह भी आ जाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा भोजन है। जोड़ों के सूजन और महिलाओं के जो इरेगुलर जो पीरियड्स होते हैं, शुगर के जो रोगी हैं जिनको आंख में कुछ प्रॉब्लम कमजोरी है आंख की उनके लिए और जिन जनरल महिलाओं के लिए बहुत अच्छा जो है ये अनाज है
जी।
कोदो के आटे का उपयोग सूंघने पर किया जाता है उसमें भी जो है लाभ मिलता है। यह उन शुगर के रोगियों के लिए सहायक है जो पैरों में चोट लगने के बाद गैंग्रीन जिनका हो जाता है
जी,
और
जी।
बहुत ज्यादा कष्टकारी होता है उनके लिए भी बहुत लाभदायक है
जी।
यह उन रोगियों के बहुत सहायक है डेंगू टाइफाइड या वायरल बुखार से पीड़ित हैं या जो किसी कारण से कमजोर हो गए हैं
जी।
उन सबके लिए अति उत्तम अनाज है। कुल मिलाकर आप उसको सारांश में लेंगे
जी जी
तो आप इसको ये समझ लीजिए कि ब्लड संबंधी हमारे जो भी दोष हैं जो भी अशुद्धियां हैं उनको ये बाहर कर देता है। फोड़े फुंसी खुजली इस प्रकार यानी कैंसर जो ब्लड से रिलेटेड जितने भी हमारे प्रॉब्लम हैं सबके लिए सबसे ये अति पांचों अनाजों में रक्त के संबंध के जो भी प्रॉब्लम है उनके लिए कोदो जो है अमृत है। बोन मेरो को जो है शुद्ध करता है मतलब जो पांच प्रकार के अनाज हैं कोदो कुटकी कंगनी छोटी कंगनी सावा ये पांचों के अलग अलग गुण हैं तो ये रक्त संबंधी के लिए जो है कोदो है। बाकी फिर और जो चार अनाज हैं वो किसके लिए विशेष है वो फिर हम आपको अगली चर्चा में फिर से बताएंगे।
अग्रवाल जी जैसा कि कोदो के जो बारे में आपने हमें बताया कोदो किस किस तरह के रोगों पे काम करता है ये तो आपने हमें बता दिया लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि कोदो को किस रूप में किस किस रोग में किस तरह से लिया जाना चाहिए जिससे वो उसका फायदा हमें मिले।
जो भी मिलेट्स है इसमें फाइबर जो 8% 12.5% होता है कोदो में 9% होता है तो इसको 8 घंटा भिगोना बहुत जरूरी है।
अच्छा।
8 गुना से 12 गुना पानी में इसको 8 घंटा भिगोना है
जी। जी
उससे जो है फाइबर जो है फूल जाता है
जी।
फूलने से जो होता है वो फिर पूरा काम करता है।
अच्छा।
आप समझ लीजिए कि उसके लिए इसको डॉक्टर खादर वली जी कह रहे हैं यदि हम मिलेट की यात्रा शुरू कर रहे हैं
जी
तो सबसे अच्छा ये है कि हम शुरू में कम से कम 6 हफ्ते 8 हफ्ते कम से कम 4 हफ्ते हम इसको अमली के रूप में लें। साउथ में अमली बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में उसको बासी भात बोलते हैं।
अच्छा।
मतलब उसको अनाज को जो है मोटा मोटा 10 गुना पानी में भिगो दिया
जी।
भिगो के उसको जो है 8 घंटा हमने उसको रख दिया
जी।
उसके बाद फिर उसको पका दिया पका के उसके बाद फिर उसको जो है ऊपर कपड़ा बांध के मटकी में रख दिया
जी।
अब उसके अंदर जो माइक्रोब्स पैदा होते हैं वो उसको अमृत बना देते हैं। चावल बनने के बाद 8 घंटे और 12 घंटे के बीच सेवन करना चाहिए तो आप ये समझ लीजिए कि हमने एक डॉक्टर को अपने शरीर में बैठा दिया।
अच्छा।
ऐसा खादर वली जी कहते हैं इतना महत्व देते हैं
जी।
कम से कम जो है अमली के रूप में आप 2 टाइम लीजिए
जी जी
साथ में फिर और जो भी आपको लेना है लीजिए और यदि आपको पूर्ण लाभ लेना है तो गेहूं चावल को जो है थोड़ा छुट्टी दे दीजिए। मिलेट का बाकी बहुत से व्यंजन बनते हैं जितने गेहूं से बनते हैं चावल बनते हैं सारे व्यंजन बनते हैं उस व्यंजन को खाएं और शुगर ना खाएं शक्कर ना खाएं गेहूं चावल ना खाएं तो उनको पूरा लाभ मिलेगा। स्वयं 1 हफ्ते में उनको महसूस होने लगेगा कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लाभ हो रहा है
जी।
ऐसा हम लोग देख रहे हैं।
अग्रवाल जी इस पूरी बातचीत में मैंने एक अमली जो आपने बताया तो कि अमली बनाने की जो विधि है वो आप हमें बताएं तो आपके माध्यम से हम अपने श्रोताओं तक उस विधि को पहुंचाएंगे ताकि कोदो के अमली बना करके उसका फायदा वो ले सके।
अमली जो है इसको हम लोग बासी भात बोलते हैं। बासी भात का थोड़ा सा हो सकता है बनाने का तरीका अलग होगा, लेकिन जैसा खादर जी बता रहे हैं और हम लोग भी इसको यहाँ बनाते हैं, अपने यहाँ खाते भी हैं, बनाते हैं। हमारे तुलसी मिलेट चौपाटी में भी सुबह जो है 6:30 बजे से लेके 9:30 तक यहाँ पर रेगुलर अमली मिलता है 10 रुपए गिलास में।
जी,
लोग
जी।
आके उसको देख सकते हैं। बहुत सरल तरीका है, हम लोग उसको 10 गुना पानी में भिगो देते हैं 8 घंटा, उसके बाद में फिर उसको पका देते हैं। पकाने के बाद में उसको मटकी में करते हैं ताकि उससे ज्यादा लाभ होता है।
अच्छा।
और उसके बाद उसको सूती कपड़े से ढक देते हैं, जहाँ कुनकुना हुआ उसको ढक देते हैं, और फिर उसको 8 घंटे बाद हम लोग उसको खा लेते हैं। पहले हम लोग नमक वगैरह कुछ नहीं डालते हैं, डालने से क्या होता है माइक्रोब डिस्टर्ब होते हैं। बाद में हम उसमें जो भी हम नमक डालें, अचार लें, चटनी लें, पापड़ लें, सब्जी लें, दही लें, जो भी है साथ में हम ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत। और साथ में कुछ नाश्ता करना है वो भी कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि इसको फ्रिज में नहीं रखना चाहिए।
अच्छा।
फ्रिज में रखने से जो है वो माइक्रो डिस्टर्ब होते हैं, और दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। दोबारा गर्म करेंगे तो भी डिस्टर्ब होते हैं। बहुत बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, कोई भी बना सकता है।
अग्रवाल जी, खाने की बात तो आपने बताई, खाने से पहले या खाने के बाद किसी प्रकार का परहेज करने की जरूरत है क्या अमली को लेने के साथ?
कोई परहेज की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग तो पहले सोचते थे अचार वगैरह नहीं खाना चाहिए, एक खातर जी कहते हैं अचार जरूर खाइए, अचार के अंदर में हमको विटामिन मिलता है, खट्टापन जो होता है ना तो विटामिन मिलता है, और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बाकी तो देखिए कोई भी चीज से अति नहीं करें, बहुत ज्यादा खटाई खा रहे हैं, बहुत ज्यादा मिर्च खा रहे हैं, बहुत वो नहीं होना चाहिए। जैसा हम लोग घर में भोजन करते हैं कर सकते हैं, कोई परहेज की जरूरत नहीं है।
जैसे मैंने सुना है अग्रवाल जी कि किसी भी प्रकार के मिलेट्स लेने के बाद कम से कम 4 से 6 घंटे किसी दूसरा अनाज का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, ये भी बात भी है क्या इसके साथ?
कोई भी मिलेट हम लेते हैं ना तो उसमें फाइबर होने से क्या होता है, धीरे धीरे पचता है, धीरे धीरे जो है ग्लूकोज रिलीज करता है, हमारे खून में जाता है। 5 घंटा तो भूख लगती च नहीं है, अब इसके बाद फिर हम कुछ लेने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी हम कोशिश यही करें, मान लीजिए कहीं गए हैं किसी ने कहा भैया ले लो थोड़ा सा, तो वैसे भी जो है स्वास्थ्य का जो नियम है आयुर्वेद के हिसाब से कि हमको एक भोजन लेने के बाद में कम से कम जो है 5 घंटा गैप करना चाहिए, हमको सिर्फ पानी पीना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी ना लें, ताकि वो यदि हम बीच में कुछ ले लेते हैं तो हमारे जो भोजन पचाने की प्रक्रिया चल रही है, फिर वो कुछ ले लेने से फिर वो रिवर्स हो जाती है, वो नए जो हमने लिया आहार उसके ऊपर वो उसको प्रक्रिया करने लगता है, तो उससे नुकसान होता है।
लक्ष्मी नारायण जी, कोदो के बारे में आज आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई।
मनुष्य ने पहले पहल जिन फसलों को उगाया था उनमें तृण धान्य प्रधान थे। इनके लिए कम पानी की जरूरत होती है, कीटनाशक और रासायनिक दवाइयों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। धान और गेहूं की तरह ही सिरधान्य पुआल की नस्ल की ही प्रजातियां हैं। ये आकार में छोटे और गोल होते हैं। भारत में 141 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल के साथ 177 जिलों में फैले 85 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल वर्षाधारित क्षेत्र हैं। इस देश में लगभग 60% क्षेत्र खेती का है। देश के सभी खाद्यान्न 44% वर्षा पर आधारित हैं। 75% दालें, 90% से अधिक बाजरा, तृण धान्य, मूंगफली आदि की उत्पत्ति वर्षा पर आधारित नहीं है। अपेक्षा के बावजूद वर्षाधारित प्रांतों में 50% ग्रामीण किसानों के लिए ये जीवन आधार है। देश में 60% पशुओं का पोषण भी इन्हीं से हो रहा है। ये मिलेट्स पुराने जमाने की फसलें हैं जिनको कहीं पर मोटा अनाज कहा जाता है, कहीं पर उसको गरीबों का अनाज कहा जाता है, लेकिन ये पुराने जमाने की फसलें हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। अलग अलग वातावरण की परिस्थिति में इनकी खेती की जा सकती है, विश्वसनीय उपज है, क्षेत्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करने वाली फसलें हैं, वातावरण के बदलाव भी झेल सकने वाली फसलें हैं और वैकल्पिक प्रणाली के लिए उपयोगी फसलें भी हैं। अधिक पोषक तत्व युक्त बीज हैं, फसलों में विविधता है, करीब 200 तरह के मिलेट्स उपलब्ध हैं, मवेशियों के लिए गुणवत्ता वाला चारा है और किसानों के लिए अधिक आय और बेहतर जीवन शैली वाला।
श्रोताओं, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री गोविंद प्रसाद तिवारी जी, जो बालको के रिटायर एक कर्मचारी हैं। इन्हें भी मिलेट्स को लेकर के एक अच्छी खासी जानकारी है। तो आपका भी स्वागत है गोविंद जी हमारे आज के इस कार्यक्रम में। जैसा कि आज आप सुन ही रहे हैं कि कोदो के संदर्भ में हम बातचीत कर रहे हैं अग्रवाल जी से, तो कोदो के संदर्भ में आपकी जो जानकारी है वो भी हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे आपके माध्यम से।
कोदो एक नाम जो है छत्तीसगढ़ के लिए कोई नया नहीं है
जी।
इसकी फसल बहुत पहले से छत्तीसगढ़ में होती आई है और आज भी हो रही है, और ये बहुत इजीली अवेलेबल है हमारे छत्तीसगढ़ में। बस इसके गुणों के बारे में हमको खादर वली जी ने जागरूक किया है, नहीं तो कोदो तो यहाँ बहुत पहले से खा रहे हैं लोग, लेकिन उनको पता नहीं है इसके वैज्ञानिक गुण।
जी जी, मैंने देखा है कि अगर चावल के बीच में अगर कोदो आ जाता है तो लोग उसको निकाल देते हैं, जिनको जानकारी नहीं है वो पता नहीं क्या बीज आ गया ऐसा करके। तो उस समय जब हमें भी जानकारी नहीं, तो हमें भी लगता था कि कोई बेकार सा अनाज आ गया है, उसको हम निकाल देते हैं। लेकिन जानने के बाद जब हमने देखा कि कोई कोदो निकाल देता, तो हमें बड़ा दुख होता है कि अमृत तुल्य अनाज को हम निकाल के जिसमें कोई फायदा नहीं उसको हम खा रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं हमारे साथ।
कोदो को हम तृण धान्य भी बोलते हैं। तृण धान्य का मतलब तिनके वाला धान्य
जी।
बहुत सारी हमारे जमीन में आपने बहुत सारी देखी होंगे, कई प्रकार की घास फूस होती हैं, तो एक प्रकार से ये घास ही है
जी।
इसमें बहुत कम पानी लगता है
जी।
धान्य मतलब भोजन खाने वाला
जी जी,
और तृण माने तिनके वाला
जी जी। तिवारी जी, इसका अगर फसल लिया जाए कोदो का, तो उसके किसी विशेष प्रकार का की तैयारी की जाती है इसके उत्पादन के लिए, या खेत की तैयारी की जाती है, किस तरीके की जमीन पे ये उपजता है ये बताइए।
मुझे याद आ रहा है आज से कई साल पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे
जी,
तो उनने बोला कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो पानी के ऊपर होगा, क्योंकि वर्तमान की हमारी जितनी भी फसलें हैं गेहूं चावल, इसमें इतना ज्यादा पानी लगता है, इतना ज्यादा पानी लगता है कि आने वाले समय में पानी की कमी पड़ जाएगी। तब ऐसे समय में हमें ऐसी फसलों की आवश्यकता होगी जो कम पानी में भी पैदावार दे सकें और हम सर्वाइव कर सकें इस पृथ्वी पे। तो उसके लिए ये जो है वरदान है, 5 तृण धान्य जो है, 1/10 पानी इसमें लगता है फसल में गेहूं और चावल की अपेक्षा। तो आप सोचिए कि कितना पानी आप बचा रहे हैं, तो ये आने वाले भविष्य की जरूरत भी बनने वाली है
जी।
आप अगर नहीं भी इसको स्वीकार करेंगे तो समय आपको ये स्वीकार करा देगा कि आपको ये लेना पड़ेगा।
बहुत अच्छी बात आपने तिवारी जी हमें बताई, और ये श्रोताओं आज की जो बातचीत है कोदो को लेकर के हम कर रहे हैं आपसे। और श्रोताओं, जैसा कि आप सभी ने सुना कि समय की मांग को देखते हुए और आने वाले पर्यावरण की जो परिवर्तन हो रहा है उसके हिसाब से भी जो हमारा सिरी धान्य है वो हमारे जीवन आहार बनने वाला है। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे यहीं लेंगे अनुमति। लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जी के साथ और गोविंद प्रसाद तिवारी जी के साथ आज हमने जो बातचीत की कोदो को लेकर के, इसी तरह अगले अंक में हम किसी एक और सिरी धान्य पर बातचीत करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे और जानेंगे उनके सारे गुणों के बारे में। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति अनीश श्रीवास को, स्वीकार करें हमारा नमस्कार।
आप सुन रहे थे अर्पण रेडियो द्वारा प्रसारित रेडियो श्रृंखला मिलेट मिशन।